सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं जय उधरसेननाहो जेन महाकम्मपयडि पाहुडसेलो बुद्धिशिरेणो धरियो समप्यो हुफयंतस। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धौला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है और जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। सातवीं जो पुस्तक है बंधक प्ररूपणा, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 55 पर आ गए हैं। यह अपना विषय नाम कर्म के उदय स्थानों संबंधी चल रहा है और उसमें भी अलग अलग गतियों में कौन कौन से नाम कर्म के उदय होते हैं उसकी हम प्ररूपणा चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें मनुष्यों की बात चल रही है, मनुष्यों में सामान्य मनुष्य, विशेष मनुष्य और विशेष मनुष्य। सामान्य मनुष्य ने हम आप सभी पर्याप्त अपर्याप्त सभी उसमें आ गए। विशेष में आहारक यानी मुनि, आहारक रिद्धिधारी वाले जब आहारक शरीर बनाते तभी की बात है, और विशेष विशेष में संयोग केवली गुणस्थान वाले जब समुद्धात करते हैं उस समय, तभी ये विशेष विशेष मनुष्यों की अभी प्ररूपना अपनी चल रही है। मनुष्यों में हमने देखा जैसे तीरियंचों में था वैसे मनुष्यों में नाम कर्म के उदय के पांच काल बताए हैं। एक विग्रह गति काल, जब जहां जन्म लेना है वहां परमाणु का ग्रहण शुरू करता है, तो यहाँ मिश्र शरीर काल, शरीर पर्याप्ति पूरी होने पर शरीर पर्याप्ति काल, उच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण होने पर उच्छ्वास पर्याप्ति काल और भाषा पर्याप्ति पूर्ण होने पर भाषा पर्याप्ति काल। हमने देखा है कि विग्रह गति में 21 प्रकृतियों का उदय रहता है, मिश्र शरीर अवस्था में 26 का, वहाँ अनुपूर्वी का उदय मिटता है और उस 20 में और 6 प्रकृतियों का उदय शुरू होता है, तो 26 वाला स्थान होता है। 26 के बाद शरीर पर्याप्ति पूरी होने पर 28 वाला होता है, परघात और विहाय गति दो उसमें शुरू होते हैं। उच्छ्वास पर्याप्ति पूरी होने पर उच्छ्वास नाम कर्म का उदय शुरू होता है, तो 29 वाला हो जाता है, और जब भाषा पर्याप्ति पूरी होती है तो सुस्वर या दुस्वर नाम कर्म का उदय होता है, तो यह 30 वाला स्थान शुरू होता है। ये सामान्य मनुष्यों की बात देखी। अब विशेष मनुष्यों में आहारक वाले की जो बात है, तो उनमें 21 वाला स्थान नहीं होता क्योंकि उन्हें कोई विग्रह गति का वहां कोई सवाल ही नहीं है। तो जब आहारक शरीर की रचना शुरू होती है तो सबसे पहले मिश्र शरीर काल, तो यहाँ तो हमने 26 देखा था, वहां सहनन नहीं होता उनके, इसलिए 25 का ही स्थान होगा वो। उसके बाद प्रशस्त विहाय गति और परघात का उदय शुरू होता है, तो 25 और 2 27 का स्थान होता है। आहारक वाले का 20 वाला नहीं होता, आहारक की बात चल रही है, आप 20 वाली बात सहयोगी केवली की बता रहे हैं। छठे गुणस्थान वाले जीव को, मुनिराज को, आहारक शरीर बनाना है तो बीच में विग्रह गति का सवाल ही नहीं होता। विशेष विशेष में हम विशेष आहारक की बात चल रही है अपनी, चले ना, तो 25 के बाद 27 वाला होगा। यहाँ तो सभी शुभ प्रकृतियाँ हैं यानी भंग एक एक ही होता है। 27 के बाद उच्छ्वास वाला है वो 28 वाला होगा, और फिर भाषा पर्याप्ति वो 29 वाला, तो इनके चार ही स्थान होते हैं। अब विशेष विशेष की बात देख रहे हैं, तो विशेष विशेष में ये समुद्धात वाली अवस्था है उसको लेना है। यहाँ भी विग्रह गति तो है ही नहीं है, परंतु जहाँ समुद्धात अवस्था है, कौन सी वाली, प्रतर लोकपूरण और फिर प्रतर, उस अवस्था में इनके 20 वाला उदय होता है। वहाँ अनुपूर्वी का कोई सवाल नहीं है, इसलिए पहले जो हमने गिनी थी विग्रह गति में उसमें से अनुपूर्वी को घटा देना तो अन्य 20 वाले स्थान होते, जो तीर्थंकर है उनके 20 के बदले 21 वाला स्थान होता है। अब जो समुद्घात करके वापस लौटेंगे तो फिर वो मिश्र अवस्था शुरू हो जाती है, मिश्र शरीर अवस्था होगी, फिर वो पर्याप्ति एक एक बताएंगे। तो इसकी बात अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, 55 पेज पर शुरू करते हैं। यहाँ लिखा यदि, नीचे से दूसरा पैराग्राफ, यदि वह संयोग केवली तीर्थंकर हो तो उसके पूर्वोक्त 20 प्रकृतियों के अतिरिक्त एंड इन एडिशन तीर्थंकर प्रकृति के उदय सहित 21 प्रकृतिक उदय स्थान होता है। तीर्थंकर प्रकृति वाले हैं तो वहां भी भंग एक ही होगा जो प्रशस्त प्रकृतियों वाला उदय होगा। अब कपाट समुद्घात की बात करें, कपाट समुद्घात को करने वाले विशेष विशेष मनुष्य के भी यही प्रकृतियां उदय में आती है। विशेषता केवल यह है कि अभी इन एडिशन और कुछ कर्मों का उदय शुरू हो जाता है। वो कौन कौन सी है तो कहते हैं औदारिक शरीर। अब कोई एक संस्थान है, तीर्थंकर हो गए तो समचतुरस्र संस्थान ही होगा, तीर्थंकर प्रकृति से रहित है तो छह संस्थानों में, संस्थान की बात है, छह संस्थानों में से कोई एक होगा। तो यहाँ क्या लिखते हैं, देखिए ये जरा वाक्य रचना कंफ्यूजिंग है, अगर हम यहाँ नंबर डालेंगे तो अच्छा रहेगा। देखो औदारिक शरीर के लिए एक नंबर लिखेंगे हम, और समचतुरस्र संस्थान के लिए दो, आगे लिखे तीर्थंकर प्रकृति के उदय से रहित उस छह संस्थानों में से कोई एक, यानी समचतुरस्र संस्थान जो लिखा है तो ये तो तीर्थंकरों की अपेक्षा, और अन्य जीवों को छह में से कोई भी एक हो सकता है। फिर तीसरा आंकड़ा डालना है औदारिक शरीर अंगोपांग, ये तो सबके ही होगा, ये संस्थानों का ही केवल डिफरेंस है। वज्र ऋषभ नाराज सहनन, कल दीपेश भाई आपका प्रश्न था ना कि कोई जीव मोक्ष में जाता है तो उसके तो वज्र ऋषभ नाराज सहनन होता है, तो क्या जन्म से ही वो होता है, क्या बाद में वो बदलता है, है ना, कि पहले नहीं होगा और बाद में पुरुषार्थ किया और उसको मोक्ष जाना है, शपथ श्रेणी माननी है, तो क्या वो सहनन बदल जाता है, तो नहीं बदलता। जन्म से ही जिन ये नाम कर्मों का उदय चल रहा है उन्हीं का चलेगा, ये संस्थान है या सहनन है उसका वो नाम कर्म का उदय बदलेगा नहीं। इसका अर्थ क्या है, जिसका मोक्ष जाना उसी भव में निश्चित है उसको वो नियम से वज्रेश्वर नारायण सहनन ही होगा जन्म से ही। ऐसा ही सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है। वो सहनन वाला कुछ मोक्ष में मदद नहीं करता हूं, क्योंकि सहनन से ही मोक्ष होने होता तो सातवें नरक में जाने वाले की भी वज्र ऋषभ नाराज सहनन होने की आवश्यकता रहती है, उसके बिना वो सातवें नरक का भी पुरुषार्थ नहीं करता। पाप का पुरुषार्थ हो या मोक्ष का हो, वैसे कौन से जीव को कैसा होता है ये हमें ज्ञान होता है उससे। वो सहनन है इसलिए वो पुरुषार्थ कर सका ऐसी बात नहीं है, यानी ऐसे सहनन वाले को इतनी अंतरंग दृढ़ स्थिरता हो सकती है। हमने देखा था श्रेणी मानने का पुरुषार्थ तो ऊपर के तीन सहनन वाले करते, उपशम श्रेणी वाले तो तीनों सहनन वालों को हो सकता है, परंतु क्षपक श्रेणी तो वही मान लेंगे जो वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाले हैं, क्योंकि वो तो तद्भव मोक्षगामी है तभी तो क्षपक श्रेणी मान लेंगे। अब यहाँ देखते हम ये चार नंबर पर आ गए, पांचवा नंबर है उपघात और छठा नंबर है प्रत्येक शरीर, यानी उस 20 में ये 6 मिलाएंगे तो 26 का होगा सामान्य केवली के लिए, और तीर्थंकरों के लिए 21 वाला था उसमें 6 मिलाएंगे तो 27 वाला हो जाएगा। इन प्रकृतियों को ग्रहण कर लेने से 26 या 27 प्रकृतिक उदय स्थान होता है। यहाँ भंग, अभी तीर्थंकरों के लिए तो एक ही भंग होगा, अन्य जो है 6 संस्थान वाले उसके कारण वहां अलग अलग भंग बनेंगे। यहाँ भंग 26 प्रकृतिक उदय स्थान में छह संस्थानों के विकल्प से छह हो गए, विकल्प यानी भेद, अलग अलग संस्थानों का उदय होगा तो वहाँ कॉम्बिनेशन अलग अलग जीवों के अलग अलग हो गए। और 27 प्रकृति के उदय स्थान में केवल एक होगा, क्यों कहा ऐसा? अभी हमने उसका कारण देखा था। हाँ, उनकी कौन सी होती है? हाँ, समचतुरस्र संस्थान, ये एक ही संस्थान उनके पाए जाता है तीर्थंकरों के, इसलिए उनके एक ही भंग है। हाँ, छहों संस्थानों में से कोई भी संस्थान हो सकता है, कोई लंबा है या ठिंगना है या कोई कुबड़ा है, तो उससे कोई उसके मोक्ष पुरुषार्थ में कोई बाधा नहीं आती है। वो तो शास्त्रों में कथा आती है ना अष्टावक्र की, वो तो आठ जगह ऐसा बाका था और लोग हंसते थे उसको, ऐसी कथा आपने सुनी होगी शायद, जनक राजा के टाइम की है। तो वो उनके दरबार में आया तो उसको हंसने लगे सब, उन्होंने बोला यहाँ तो सारे चमार बैठे हैं, मुझे तो जैनी एक भी नहीं दिख रहा है। क्यों? ये तो चमड़े को, ये तो शरीर को ही देख रहे हैं और शरीर को ही देखकर हंस रहे हैं। ये संस्थान का ऐसा है, संस्थान हो या विहाय गति हो या सुस्वर दुस्वर हो, सामान्य केवली के लिए कोई भी किसी का भी उदय हो सकता है। अब कहते तीर्थंकर प्रकृति के उदय से रहित उसके 26 प्रकृतियों में, अभी अगला वाला बताएंगे, 26 के बाद शरीर पर्याप्ति पूरी होती है तो परघात और विहाय गति शुरू होगी। तो 26 प्रकृतियों में परघात और प्रशस्त व अप्रशस्त विहाय गति में से कोई एक, ये सामान्य केवली की बात है। 26 वाला लिया ना, तीर्थंकरों के तो 27 वाला था, ये 26 में दो और मिलेंगे। अभी देखो, अभी लौट कर वापस मूल शरीर में आने पर ये फिर दोबारा पर्याप्ति होती है सारी, नहीं समझे? हाँ, तो ये हमारा तो पर्याप्तियों का काल तो अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त था, यहाँ तो एक एक समुद्र, जो समुद्घात है कपाट में फिर दंड में, वहाँ उसकी एक एक समय वाला हो जाता है। तो ये 26 में दो और मिलेंगे, परघात और विहाय गति। सामान्य होगी तो प्रशस्त होगी या अप्रशस्त होगी, दोनों में से कोई एक होगी। परघात और प्रशस्त अप्रशस्त विहाय गति में से कोई एक प्रकृति को ग्रहण कर मिला देने पर 28 प्रकृतिक, तीर्थंकर वाले के कितने हो गए? 29, 27 और 2, उनके तो प्रशस्त विहाय गति ही होगी, उनमें अप्रशस्त वाला वो भेद नहीं रहेगा। तो तीर्थंकर प्रकृति के उदय सहित 27 प्रकृतियों में उक्त दो प्रकृतियों के मिला देने पर 29 प्रकृति दंड समुद्घातगत केवली का उदय स्थान होता है। पहले कौन सा देखा था? 26 वाला, उस कौन कपाट समुद्घात। देखो, प्रतर लोकपुरण दोबारा प्रतर, उसके बाद कपाट और उसके बाद दंड। तो प्रतर में तो 20 या 21 का स्थान था, कपाट में, कपाट समुद्घात में आने पर 26 या 27 वाला हो गया, अब दंड समुद्घात में आने पर ये और एक बढ़ गया, ये दो बढ़ गए, 26 और 27 में से 28 या 29 हो जाएंगे दंड में, और फिर मूल शरीर में फिर 30 वाला हो। दंड समुद्घातगत केवली का उदय स्थान होता है। विशेषता यह है कि तीर्थंकरों के केवल एक प्रशस्त विहाय गति ही उदय में आती है। इस प्रकार 28 प्रकृतिक यानी प्रकृति वाले उदय स्थान के, पहले हमने देखा था ये 6 संस्थानों वाले 6 विकल्प थे, अब जब विहाय गति का भी उदय शुरू हुआ तो 6 संस्थान और ये 2 विहाय गति, तो 12 भंग हो गए। 6 संस्थान और प्रशस्त अप्रशस्त विहाय गति के विकल्पों से 12 भंग होते हैं और 29 प्रकृतिक उदय स्थान का विकल्प रहित केवल एक ही भंग है, तीर्थंकरों का। पूर्वोक्त विशेष विशेष मनुष्य के, यानी ये संयोग केवली समुद्धत करने वाले उनकी बात चल रही। आन पान पर्याप्ति से पर्याप्त हुए, ये ख्याल में आता है ना, समुद्घात किया तो दोबारा शरीर में, मूल शरीर में प्रवेश करते तो सभी पर्याप्तियां फिर दोबारा पूर्ण होती। तो पहले वो परघात विहाय गति का उदय शुरू हुआ, अब क्या होगा, ये आन पान यानी उच्छ्वास पर्याप्ति पूरी हो जाएगी, तब उच्छ्वास नाम कर्म का उदय शुरू हो जाएगा। समुद्घात अवस्था में वो उदय मिट गया था, अब दोबारा फिर शुरू हो रहा है। उक्त 28 और 29 प्रकृतियों में उच्छ्वास के मिला देने पर क्रमशः 29 और 30 प्रकृतिक उदय स्थान होता है, सामान्य के लिए 29 और तीर्थंकरों के लिए 30 वाला। इनके भंग पहले के समान 29 प्रकृतिक उदय स्थान के 12 और 30 प्रकृतिक उदय स्थान का केवल एक है। उसमें भंग कितने हैं उसकी बात है, संस्थान और विहाय गति से भंग 12 थे। अब ये भंग और कुछ बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे। ये लास्ट है कि अभी भाषा पर्याप्ति पर और कुछ शुरू हो जाएगा? हाँ हाँ, भाषा पर्याप्ति पर सुस्वर दुस्वर दो और बढ़ेंगे, उसमें और दुगुना हो जाएंगे उसका, सामान्य की बात है। हाँ देखो आगे, उसी विशेष विशेष मनुष्य के भाषा पर्याप्ति से पर्याप्त हुए पूर्वोक्त 29 व 30 प्रकृतियों में सुस्वर और दुस्वर में से कोई एक मिला देने पर, तीर्थंकरों के तो सुस्वर ही होगा, सामान्य के लिए सुस्वर दुस्वर दोनों में से कोई एक हो सकता है, क्रमशः 30 और 31 प्रकृतिक उदय स्थान होता है। 30 प्रकृतिक उदय स्थान के भंग अभी कितने हैं? 6 संस्थान, 2 विहाय गति और 2 स्वर। तो 6 संस्थान, प्रशस्त और प्रशस्त विहाय गति और सुस्वर दुस्वर के विकल्पों से 24 होते हैं, 6 × 2 × 2 तथा 31 प्रकृतियों वाले उदय स्थान का भंग केवल एक होता है। 31 वाला किसके है? तीर्थंकरों के, क्योंकि तीर्थंकरों के दुस्वर और अप्रशस्त विहार गति तथा अन्य 5 संस्थानों का, किसको, पहले को छोड़कर अन्य 5 का उदय नहीं होता, क्योंकि वे अप्रशस्त है प्रकृतियां। तीर्थंकरों के सभी प्रशस्त कर्मों का ही उदय चल रहा है। तीर्थंकर तो स्वयं प्रशस्त प्रकृति है, उसके साथ में उदय आने वाली अन्य प्रकृतियां भी सारी प्रशस्त प्रकृतियां होती है। उनके वो अप्रशस्त विहार गति या अन्य संस्थान या दुस्वर वे उनके नहीं होंगे। हाँ संभव है, अरहंत दशा में दुस्वर नाम कर्म का उदय संभव है, अप्रशस्त विहार गति भी संभव है, यानी जिसका स्वर अच्छा नहीं है उसको भी केवल ज्ञान हो सकता है, दूसरी भाषा में हम लेते हैं, है ना? या शरीर का आकार असुहावना है तभी हो सकता है उसको। अन्य दुर्भग अनादेय अयश कीर्ति उनके नहीं है, उसका उदय नहीं है। हाँ दूसरा नाम कर्म का उदय है, वचन योग है, भाषा ही कहलाती उनकी भी। आपका कहना है ओम ध्वनि सर्वांग से निकलती है, उनको आवाज कहाँ है, तो वो भी वहाँ वचन योग के बिना, वचन बल प्राण के बिना वो भाषा भी नहीं खिरेगी उनकी। और ऐसा नहीं कि सबकी खिरती ही है, किसी की नहीं भी खिरती, मुख केवली भी होते हैं ना वहाँ, फिर भी वहाँ उदय है उनका, अभी भले वो वचन योग नहीं हुआ, भाषा नहीं खिरी, फिर भी उदय की विच्छित्ति कब होगी उसके, सुस्वर दुस्वर विहाय गति वगैरह 13वें के अंत में, तब तक उनका उदय है उन नाम कर्मों का। जैसे हमारा आपका स्वर नाम कर्म का उदय चल रहा है, पर हम हर समय कहाँ बोल रहे हैं, चुपचाप बैठेंगे फिर भी वो नाम कर्म का तो उदय चल रहा है, ख्याल है ना? अब ये जो 31 प्रकृतियां हैं तीर्थंकरों की, उसको बताएंगे। उन तीर्थंकरों हाँ, आपका ऐसा प्रश्न है, सामान्य केवली का 13वें गुणस्थान का काल की बात है ना, और तीर्थंकरों का 13वें का काल, इसमें कुछ फर्क है क्या? कोई नहीं। सामान्य केवली का भी काल बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत बड़े में बड़ा कितना है? तो कर्मभूमि के मनुष्य की उत्कृष्ट आयु, अधिक से अधिक आयु 1 करोड़ पूर्व की है, और ऐसे जीव को किसी को 8 वर्ष पूरे होने पर, कौन से, गर्भ से लेकर 8 वर्ष पूरे होने पर केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। वो मुनि अवस्था भी लेगा, केवल ज्ञान भी हो जाएगा। अब ये 8 वर्ष और कुछ समय माइनस करो 1 करोड़ पूर्व में से, और अंतिम 14वें गुणस्थान का काल माइनस करो अंतर्मूल, तो इतनी बड़ी 13वें का काल हो सकता है। अब तीर्थंकरों में भी यथा योग्य हो सकता है, ऐसे कोई नहीं कि तीर्थंकर है इसलिए लंबा काल है या छोटा काल है, ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें हमने देखा था मिनिमम कितना है, तो दिवस ये वर्ष पृथक तो होगा ही। तीर्थंकरों के 13वें गुणस्थान का काल वर्ष पृथक तो होगा ही, ऐसे हमने पहले पढ़ा था। अंतर्मूर्त में कोई तीर्थंकर हुआ और इमीडिएट मोक्ष जावे, ऐसी नहीं बात। उनकी दिव्य ध्वनि तो छूटेगी ही, तीर्थंकर नाम कर्म का उदय है ना, वो तो अंतर्मूर्त में भी हो सकता है। मिनिमम काल तो अंतर्मूर्त है 13वें का, जिसकी दिव्य ध्वनि नहीं छूटती है, और ऐसा भी हो सकता है ना, 13वां गुणस्थान हो गया अंतर्मूर्त में 14 और फिर मोक्ष चले गए। परंतु 13वें का काल वेरिएबल है, हर एक जीव का अलग अलग। जितनी आयु बची है उसमें से जब 13वां प्राप्त होता है, 13वां प्राप्त होने पर जितनी आयु बची है उसमें 14वें का ही काल माइनस करना, बाकी शेष है वो 13वें का काल, वो हर एक जीव के लिए अलग अलग होगा। अब ये तीर्थंकरों के कौन कौन सी प्रकृतियां उदय रूप है उसकी बात यहां बता, 31 वाला स्थान बता रहे हैं, और वो भी 13वें में बताएंगे, क्योंकि 14वें वाले उनके कुछ प्रकृतियों का उदय नष्ट हो, वो खिर जाए, उदय की विच्युति हो जाएगी, तब 14वें में उदय रूप प्रकृतियां कम हो जाएगी, 9 या 8 या 9 ऐसे 12 तो सबको मिलकर, आघाती को मिलाकर, यहां नाम कर्म की बात चल रही है। देखिए चारों आघातियों का उदय चल रहा है, एक आयु है, एक गोत्र है और एक वेदनी है, बाकी जो है 12 में से उदय रूप जो है वो नाम कर्म की है। तो तीर्थंकरों के 9 होगी और अन्य को 8 होगी, परंतु उसके पहले वाले की 13वें की बात यहां चल रही है। 13वें गुणस्थान में संयोगी केवली तीर्थंकरों को कौन सी प्रकृतियां उदय रूप है उसकी, मिनिमम मैक्सिमम तो करोड़ पूर्व में कुछ कम। हाँ, जैसे हम देखते हैं ना, सिमंदर भगवान कब से है विराजमान, चौथे काल या हमारा कुछ चल रहा था तभी से है ना, मुनि सूरत भगवान के समय से, और आगे चलकर कितने तीर्थंकर हो जाएंगे तब तक उनका चलेगा, इतनी लंबी आयु है वहां की। मनुष्य होके जाना है, विदेह क्षेत्र में जन्म लेना है मनुष्य रूप से, हाँ, तो यह मनुष्य अगर विदेह क्षेत्र में जाता है तो मिथ्यात्व में जाना पड़ेगा, क्योंकि सम्य दृष्टि हो जाएंगे तो स्वर्ग में चले जाएंगे। पहले भी मनुष्य किसी ने मनुष्य आयु बांधी है तो भोग भूमि में जाना पड़ेगा, और वो भी शायिक होकर जाते हैं वगैरह वगैरह, उसमें बहुत सारे नियम है। तो हमें तो सिमंदर के पास जाना है, तो बिना सिमंदर के पास जाए भी अपना काम हो सकता है। हम कहेंगे क्या जुगमंदर चलेंगे, ये जस्ट लोगों की क्या क्या भ्रांति चलती है ना उस पर, तो सिमंदर जुगमंदर बाहु सुबाह उनके तो नाम भी नहीं सुने हमने, हाँ, तो क्या उनके पास से चलेगा आपको सम्य दर्शन, तो कहे नहीं, क्योंकि हमने वो सिमंदर हमारे लाडले हैं ना, तो तीर्थंकरों में भी हमने वो बांट लिए कौन से चाहिए कौन से नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पर बहुत भ्रांति चलती है, पार्श्वनाथ सबके प्रिय है बहुत, महावीर भगवान, वो महावीर जी क्यों जाते हैं हमारे यहाँ चलते हैं, आपके यहाँ से नहीं चलता, आपको कुछ मालूम नहीं, आप यहाँ बसते नहीं ना, महावीर जाते हैं जिसको बच्चे नहीं, बच्चा होने के लिए वहाँ जा, हाँ पता है आपको, अच्छा है, यानी उनकी फेमस इतने फेमस है कि वो अमेरिका वाले भी जानते हैं वो भी अपने घर के या अपने गांव के महावीर नहीं चलेंगे, वहां के जाएंगे ये वो महावीर जी मालूम है जयपुर के पास है, सवाई माधोपुर के पास। ये भ्रांतियां हमारी चलती है। शांतिनाथ भगवान हमें शांति देंगे, हाँ, बाकी कोई शांति देने में समर्थ नहीं है। हाँ, 49 भाव में मोक्ष चला जाएगा तो ये वहाँ के डोली वाले कितने दफे करते हैं, हाँ? हाँ, तो उनको ज्यादा बार मोक्ष होना चाहिए ये ऐसे ही चलते रहते हैं और एक दूसरे को माहो माहे ऐसा ही उपदेश होता है। चलो, तो ये हम 31 प्रकृतियां देखते हैं जो तीर्थंकरों के 13वें गुणस्थान में उदय रूप है। देखो, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, औदारिक, तेजस, कारमान शरीर, समचतुरस्र संस्थान, दूसरे जीवों को अन्य अन्य भी संस्थान हो सकते हैं, औदारिक शरीर अंगोपांग, वज्र ऋषभ नाराज सहनन, अभी जो कोई केवली है उनके यही एकमात्र सहनन होगा वज्र ऋषभ नाराज सहनन, वर्ण गंध रस स्पर्श, अगुरु लघुक, उपघात परघात उच्छ्वास, प्रशस्त विहाय गति, अन्य किसी को अप्रशस्त भी हो सकती, यहाँ तीर्थंकरों की बात चल रही है, त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक शरीर, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, सुभग सुस्वर, ये न दुर्भग तो किसको होगा ही नहीं, सबको सुभग ही होगा, परंतु सुस्वर के बदले दुस्वर हो सकता है किसी को, सामान्य केवलियों को, आदेय भी सबको होगा, यश कीर्ति भी सबके होगी, निर्माण और तीर्थंकर, तीर्थंकर को जिसने ये तीर्थंकर प्रकृति बांधी है उन्हीं को उसका उदय होगा। ये उदय यहाँ 13वें में हो रहा है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो 4थे से लेकर 8वें गुणस्थान तक होता है और उदय यहाँ 13वें में जाकर होता है। ये 31 प्रकृतियां तीर्थंकर के उदय में आती है। ये आपका प्रश्न है ना, तीर्थंकर का कितना काल होता है, तो इस उदय स्थान का जघन्य काल वर्ष पृथक्त्व है, क्योंकि उदय रूप अभी यहाँ तीर्थंकर प्रकृति का उदय यहाँ शुरू हो गया और जो अन्य कोई जो है ना शरीर संबंधी है, सहनन संबंधी है, निर्माण संबंधी है, इसमें तो बहुत सारी प्रकृतियां तो 13वें के अंत में वो उदय मिट जाएगा उनका, 14वें में जाने के बाद 9 का ही उदय होगा तीर्थंकरों के और अन्य को 8 का उदय होगा, तो इसलिए यहाँ पर ये उदय रूप है और उसका जघन्य काल कितना है, वर्ष पृथक। तो क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति के उदय वाले सहयोगी जिनका यहाँ विरह काल लिखा है परंतु वो गलत है, विहार काल चाहिए, ऊपर पढ़ेंगे हम प्राकृत में, क्योंकि पहले मैंने भी विरह काल का क्या अर्थ होता है, गैप अंतर, तो दो तीर्थंकरों के बीच में कोई गैप नहीं रहता है, तीर्थंकर तो हमेशा रहेंगे ही, निरंतर रहेंगे, 13वां गुणस्थान भी निरंतर है, कहीं ना कहीं तो हमेशा ही विद्यमान होंगे ही, एक समय भी ऐसा नहीं होगा कि इस विश्व में तीर्थंकर की सत्ता ना हो, तो ये विरह काल तो नहीं हो सकता। वहां ऊपर पढ़ेंगे, देखो ऊपर के पैराग्राफ में नीचे से तीसरी लाइन, तीर्थ यरोदैल सजोगी जिन विहार कालस, विहार काल यानी उनका विहार काल यानी भी जो समोचरण की रचना होती है, विहार करते हैं वगैरह वगैरह, सौव जहन्नस भी वास पुदत्ता दो हेठ दो अनुवलंबो, उससे कम काल नहीं पाया जाता है। नीचे फिर हम वहां करेक्शन करते हैं, विरह काल के बदले विहार काल लिखना वहां। अब फिर पढ़ती हूँ मैं कि इस उदय स्थान का जघन्य काल वर्ष पृथक्त्व, पृथक्त्व यानी कुछ यानी 3 to 9 या ज्यादा के लिए भी पृथक्त्व शब्द आता है, यानी गिने चुने कुछ वर्ष, मिनिमम कम से कम 24 सीट है हमारे यहाँ महावीर की कम है, परंतु ऐसे अन्य भी हो गए ना, तो कम से कम वर्ष पृथक्त्व। अभी पृथक्त्व का अर्थ थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, 9 से भी ज्यादा हो सकते हैं, यहाँ कम से कम उनको लिखना है तो वर्ष पृथक्त्व लिख दिया। जगन्य काल वर्ष पृथक्त्व है क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति के उदय वाले सहयोगी जिनका विहार काल सबसे जगन्य भी वर्ष पृथक्त्व से कम नहीं पाया जाता। हम मान लेते 7-8 वर्ष, उससे तो कम नहीं पाया जाएगा, इतना तो मिनिमम होगा ही 13वें का काल। तीर्थंकर प्रकृति का उदय है तो उनका विहार होगा ही, दिव्य ध्वनि छूटेगी ही, समोचरण की रचना होगी ही, उसके उदय में यही तो बातें बनती है ना। तीर्थंकर प्रकृति का उदय है तो ये सारी बातें बनेगी
ऐसा है। हाँ, तीर्थंकर, तीर्थंकर प्रकृति जो है वो 34 अतिशयों में एक अतिशय है। जो तीर्थंकर प्रकृति बांधते हैं उनके ये 34 अतिशय होते ही है, उसमें ये समोचरण की रचना, दिव्य ध्वनि खीरना आदि जो बातें हैं वो होगी ही होगी। अभी अरविंद भाई जी का जो प्रश्न था, वो कहते महावीर भगवान के हमारे यहाँ 30 वर्ष का समोचरण चला था और वो अपने में कम से कम काल था उनका, लेकिन ये अभी जो 24 तीर्थंकर है उनकी अपेक्षा से वो बात सही है, लेकिन यहाँ तीर्थंकर इन जनरल की बात है।
ये रूल बता रहे, यहाँ नियम बता रहे कि कम से कम किसी जीव को होगा तो इतना तो होगा ही, तो ये तो मिनिमम बात है। अधिक से अधिक आपका जो प्रश्न था तीर्थंकर के, अधिक से अधिक कितना होगा काल 13वें का, तो यहाँ आगे दिया देखो, इस उदय स्थान का यानी 31 वाला उदय स्थान बता रहे। देखो इसी जीव को 13वें गुणस्थान के पहले पहले कितने का उदय स्थान था, इसी जीव को जो तीर्थंकर होने जा रहा है उस जीव को हम मान लेते 12वें गुणस्थान में कितने का उदय था इन प्रकृतियों में से, नाम कर्म की बात चल रही। हाँ बोलो। हाँ तीर्थंकर प्रकृति के अलावा अन्य 30 का, यहाँ 31 बताए ना, 31 का उदय स्थान कहाँ है तो 13वें गुणस्थान वाले तीर्थंकर को, तीर्थंकर को, उसी जीव को 12वें गुणस्थान में, नाम कर्म की बात चल रही, अन्य कर्मों की बात यहाँ नहीं है। अन्य ज्ञानावरण वगैरह 12वें में थे उसकी बात अभी हम नहीं उठा रहे, नाम कर्म की अकेले की बात चल रही। तो वहां 30 वाला स्थान था, वो 30 वाला स्थान उस जीव को कब से था, अब थोड़ा उल्टा हम जाएंगे ना, हमने जो पढ़ा है उसमें से ही उत्तर आने वाला है। नाम कर्म की 30 वाला जो स्थान है उनको वो कब से था, हाँ क्या 12 से, हाँ गया, तो उनके 8वें गुणस्थान में कौन सा था, 10वें में कौन सा था, हाँ नाम कर्म की बात। क्या इनके होगा तीर्थंकर, इसी जीव की जो तीर्थंकर होने जा रहा है। हाँ हाँ अरविंद भाई ने उत्तर दिया, बोलो। वो जीव जब जन्मा तब उसके विग्रह गति में 21 वाला स्थान था, फिर 26 वाला हो गया, वहां 27 वाला नहीं था हो जन्मे क्या है ना, वो समुदात में 21 और 27 का। यह जीव तीर्थंकर होने वाला जीव अभी महावीर भगवान माँ के पेट में आए तो विग्रह गति में उनको 21 का होगा या 20, सीधे आए होंगे तो जो कुछ है ना, हम मान लेते 21 वाला स्थान था, फिर 26 वाला हुआ, 26 के बाद 28 वाला हुआ, 28 के बाद 29 वाला, 29 के बाद 30 वाला, भाषा पर्याप्ति पूरी होते ही 30 वाला स्थान शुरू होगा, कब तक, 12वें गुणस्थान के अंत तक, माँ के पेट में 14 गुणस्थान है उनका। ये नाम कर्म है, उसमें गुणस्थान से कोई लेना देना नहीं है, अकेले तीर्थंकर प्रकृति का उदय 13वें में है इसलिए यहाँ गिनाया। हमने देखा था ना नाम कर्म का उदय कैसे होता है, विग्रह गति काल, मिश्र शरीर काल, शरीर पर्याप्ति काल, उच्छ्वास पर्याप्ति काल और भाषा पर्याप्ति काल। भाषा पर्याप्ति काल कहाँ से कहाँ तक है? भाषा पर्याप्ति पूरी होने से लेकर आयु के अंत तक। अब यहाँ तीर्थंकर है इसलिए एक्स्ट्रा एक नाम कर्म का उदय 13वें और 14वें में रह गया है ना। तीर्थंकर प्रकृति का उदय 13वें वाले को भी है और 14वें वाले को भी है, परंतु अन्य जो सामान्य केवली होंगे तो उनको तो 13वें गुणस्थान के अंत तक वो 30 का ही उदय रहेगा। अभी 14वें में वो उदय कम हो जाते हैं, बहुत सारे प्रकृतियों के उदय मिटते हैं, इसलिए 14वें का हिसाब हम बाद में लगाएंगे। तो ये जो यहाँ हमने 31 प्रकृति गिनी उसमें से तीर्थंकर की एक कम करो तो इतने का उदय उनको भाषा पर्याप्ति पूरी होने से लेकर 12वें गुणस्थान के अंत तक था। और यहाँ पर 31 प्रकृति वाला स्थान है क्योंकि इन एडिशन तीर्थंकर प्रकृति का भी उदय शुरू हो गया। गुणस्थानों के अनुसार तो मोहनीय के उदय बदलते हैं और मोहनीय के बंध बदलते हैं। जैसे 14थे में इतनी प्रकृतियां बनती है, वो 5वें में गया जीव उतनी बंद रुक जाता है, 6ठे 7वें में इतना बंद रुक जाता है, उदय में भी वैसे वैसे हो जाते हैं, उदय की भी विच्छित्ति हो जाती है। नाम कर्म में उसका ऐसा कोई नहीं है। नाम कर्म तो सारे शरीर आदि के संबंध में है ना, ये हमने इतनी सारी लिस्ट देखी, स्वर है, शरीर है, हड्डियां हैं, जो कुछ है उसके तो उदय जो है वही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा कि पहले दुस्वर था अभी सुस्वर हो गया, कोई दवाई खाई, कोई ऑपरेशन किया। तो ये देखो अब ये मैक्सिमम हमको देखना है काल। 31 प्रकृतियों वाला का उत्कृष्ट काल का अर्थ क्या है? 13वें गुणस्थान का उत्कृष्ट काल। हम दूसरी भाषा में बोल रहे हैं ना, यहाँ हम नाम कर्म के उदय की भाषा में बोल रहे हैं। 31 वाला स्थान कहाँ है? एकमात्र 13वें गुणस्थान वाले तीर्थंकर को ही है। नाम कर्म में 31 वाला स्थान अन्य किसी को नहीं है। तो इस उदय स्थान का उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त से अधिक, गर्भ से लेकर 8 वर्ष से कम। देखो क्या कम करना है, गर्भ से लेकर 8 वर्ष में एक अंतर्मुहूर्त मिला दो 14वें गुणस्थान वाला, और वो एक पूर्व कोटि में से घटा दो। एक पूर्व कोटि का आपको हिसाब मालूम है ना? एक पूर्व किसको कहते हैं मालूम है मनोज भाई? हाँ, 70,56,000 करोड़ वर्ष। ये कैसे निकाला? 84 लाख गुणा 84 लाख, 84 लाख का स्क्वायर करो, वर्ग करो, तो ये होता है एक पूर्व। ऐसा एक पूर्व, दो पूर्व, तीन पूर्व, चार पूर्व, ऐसा करोड़ पूर्व, इतनी कर्म भूमि के मनुष्यों की अधिक से अधिक आयु है। अब शेष उदय स्थानों का काल जानकर कहना चाहिए, शेष उदय कालों का काल लेने। अभी हमने देखा था वो 20 वाला 21 वाला जो कुछ है वो जानकर कहना चाहिए। हाँ, उदय काल का उत्कृष्ट काल, ये ऊपर का डायरेक्ट भाषांतर किया ना, उक्कस से ना, यानी उत्कृष्ट से कितना है, ये काल की बात चल रही। जघन्य काल पहले बता दिया, जघन्य काल वर्ष पृथक्त्व बताया, और उत्कृष्ट काल कितना है? अंतर्मुहूर्त से अधिक, गर्भ से लेकर 8 वर्ष से कम, 1 करोड़ पूर्व। देखो हमने पहले विग्रह गति में जो 21 वाला स्थान होता है सामान्य मनुष्यों को, उसका काल कितना देखा? एक समय, दो समय, बराबर। 26 वाला अंतर्मुहूर्त, 27 वाला अंतर्मुहूर्त, 28 वाला अंतर्मुहूर्त और 29 वाला भाषा पर्याप्ति वाला है ना। तीस वाला देखा था हमने। सामान्य मनुष्य के तो हमने पहले देखे थे ना, तीस वाला वो आयु के अंत तक रहेगा। देखो तीस प्रकृति की उदय स्थान हो गया था, अब यहाँ अयोगी के उदय स्थान बताएंगे, अयोगी के। अब अयोगी भगवान के उदय स्थान कहने पर तो तेरहवें में तो इतना उदय था, अभी हमने तीर्थंकर को देखा 31 का उदय, तो अयोगी में क्या होगा, कम होगा उदय के बढ़ेगा? हाँ कम, क्योंकि अभी उदय में आने रूप प्रकृतियों का उदय यहाँ मिट जाएगा, वो प्रकृतियां सत्ता में पड़ी रहेगी, क्योंकि तेरहवे गुणस्थान में किसी प्रकृति का नाश होता ही नहीं है, ये बराबर नहीं पुस्तक में पता है। हाँ हमने देखा था ना, तिरसठ प्रकृतियों का नाश होता है तब तेरहवे गुणस्थान आता है, बराबर। वो कहाँ नाश होता है क्या, हमने पहले बहुत बार देखा है। अब ये जो 85 प्रकृति है उसमें से उपांत समय में 72 प्रकृतियां और अंतिम समय में 13, बराबर इस तरह से जाती है। यानी अभी ये जो उदय रूप प्रकृतियां हैं वो उदय मिट जाएगा उनका, परंतु सत्ता में पड़ी रहेगी, अभी इनका नाश होने वाला नहीं, क्षय होने वाला नहीं है। जैसे 12वें के अंत में ज्ञान आवरण दर्शन सारा मोहनीय का तो 10वें के अंत में ही क्षय हो चुका था, अन्य जो 3 अघाती है वो 12वें के अंत में उनका क्षय हो चुका, उदय भी मिट गया और सत्ता में से भी चली गई। वैसे यहाँ पर जो है 13वें के अंत में ये उदय रूप बहुत सारी प्रकृतियों का उदय मिट जाएगा, सत्ता में पड़ी रहेगी, तो उदय से होने वाले कार्य भी मिट जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल तेजस शरीर नाम कर्म, कारमान शरीर नाम कर्म, औदारिक शरीर नाम कर्म, इनका उदय यहाँ अभी हमने गिना, इनका उदय मिट जाता है तो उसके निमित्त से होने वाला योग भी मिट जाता है, तभी तो अयोगी होगा। अब कर्मों का भी ग्रहण नहीं होगा और नो कर्मे ने शरीर का भी ग्रहण नहीं होगा, तेजस शरीर के परमाणुओं का भी ग्रहण नहीं होगा, ये सारा ही प्रत्येक शरीर नाम कर्म है, ये सहनन वाले नाम कर्म है, निर्माण जो शरीर का निर्माण वगैरह जो होता है ये सारे ही नाम कर्म, ये सारे ही यहाँ मिट जाएंगे। सुस्वर दुस्वर ये सब यहाँ पर मिट जाते हैं, विहार गति वगैरह जो कुछ है यहाँ सारे ही मिट जाएंगे। इसलिए वो शरीर तो है जो पहले बन चुका है, परंतु अभी योग के कारण जो हर समय शरीर के परमाणुओं का ग्रहण होता है वो कार्य यहाँ बदल जाएगा, बंद हो जाएगा, कर्मों का भी ग्रहण यहाँ पूर्ण रूप से मिट जाएगा। तो परंतु वो प्रकृतियां सत्ता में बनी रहेगी, पड़ी रहेगी, और 14वें के लास्ट बर्थ वन समय में अंत से दूसरे समय में बहुत सारी प्रकृतियां निकलेगी और अंतिम समय में उदय रूप जो है 13, अन्य अघातीय का मिलकर 13, नाम कर्म की अकेली गिननी है तो 9 अंतिम समय में वो चली जाएगी। अब यहाँ ये उदय रूप प्रकृति हम देखेंगे उसके कौन कौन से हैं 14वें वाले के। अब अयोगी भगवान के उदय स्थान कहने पर यहाँ सामान्य और तीर्थंकर में एक प्रकृति का डिफरेंस पड़ेगा, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस मादर पर्याप्त, सुभग आदेय यश कीर्ति और तीर्थंकर, ये 9 प्रकृतियां ही अयोगी केवली के उदय होती है। यहाँ भंग 1 है, इन्हीं 9 प्रकृतियों में से तीर्थंकर प्रकृति से रहित 8 प्रकृतिक उदय स्थान होता है, यहाँ भी भंग 1 है। ये जो भंग संस्थान नाम कर्म से, विहाय गति से, सुस्वर दुस्वर से पढ़ते थे उन सभी का उदय मिट गया है, इसलिए यहाँ पर जो ये सुभग आदेय यश कीर्ति वगैरह जो है वो सबके वही है, इसलिए एक एक ही भंग होगा, तीर्थंकरों के 9 प्रकृति का और जो सामान्य केवली है उनके 8 प्रकृति का। अभी हमें हमने देखा ना अंतिम समय वो 13 का नाश होता है, ये 9 वाले और अन्य तीन, एक वेदनीय, एक आयु और एक गोत्र, इनका भी वहां नाश होता है। और उसमें गत्यानुपूर्वी जो उदय रूप नहीं है परंतु सत्ता में है वो भी अंत समय में चली जाएगी। मनुष्यों के उदय स्थानों संबंधी समस्त अंगों का योग, ये सभी लिए अभी मनुष्यों संबंधी, सामान्य मनुष्य, विशेष मनुष्य, विशेष वैशेष मनुष्य, 32 कम 2700 अर्थात 2668 होता है। अब उन्होंने 11 उदय स्थान बताए हैं। एक तो 20 प्रकृतियों वाला उदय स्थान, ये बीच में डैश नहीं देना चाहिए, नहीं तो 1 से 20 ऐसा लगता है ना अपना, ऐसा नहीं है। ये जो स्थानों की संख्या है, स्थान क्रमांक, और ये जो है प्रकृति, कितनी प्रकृतियों वाले हैं, नंबर ऑफ प्रकृति, बीच में एक लाइन खड़ी कर दो तो हो जाएगा अपना काम। हमने देखा मनुष्यों में 11 अलग अलग स्थान होते हैं, कौन कौन से, तो 20 वाला, 21 वाला, 25 वाला, ये सब जो क्रम से लिखे हैं। तो ये 20 प्रकृतियों वाला स्थान जो है वो हमने किसको देखा था, थोड़ा याद करेंगे ना, मनुष्यों में समुद्घात में सामान्य केवली के लिए 20 वाला स्थान। 21 वाला स्थान किस किस को होता है, तीर्थंकरों को समुद्घात में और अन्य मनुष्यों को विग्रह गति में, बराबर। तो विग्रह गति वाला है वहां, वो अपर्याप्त वाला भी गिना और पर्याप्त में भंग पड़े, वो 9 भंग बताए उसके। अब 25 वाला किसको होगा, हाँ आहारक वाले के, मिश्र शरीर अवस्था में, उनका भी प्रशस्त प्रकृतियों वाला एक ही भंग होता है। अब 26 वाला किसको होता है, मिश्र शरीर काल में, यानी विग्रह गति समाप्त हुई और वहां शरीर धारण करने का जो पहला एक अंतर्मूर्त है, जब तक शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं होती तब तक, तो वहां पर्याप्त भी जीव है और अपर्याप्त भी जीव है, बराबर है ना। समुद्घात में होते उसकी बाद में करेंगे, वहां भी है परंतु उसकी बात अभी यहाँ नहीं ना। ये उसके भंग कितने हैं सामान्य में, 288 तो पर्याप्तों के भंग देखे, और अपर्याप्तों के, अपर्याप्त मनुष्यों के वो एक भंग अप्रशस्त प्रकृतियों वाला सारा देखा था। विशेष में कोई नहीं है 26 का स्थान, क्योंकि वहां 25 के बाद एकदम 27 का हो जाता है, और विशेष विशेष में ये 6 बताएं, 26 वाला जो है 20+6 यानी ये सामान्य केवलियों के होगा, कब होगा, आपको याद है, नहीं, प्रतर लोकपूरण प्रतर और फिर कपाट में जब आते हैं तब ये होगा 26 वाला, और जब दंड में आते हैं तो और 2 का बढ़ जाएगा, परघात और वो व्यायगति, हाँ ये 6 भंग यहाँ होंगे उनके। ये 27 वाला स्थान कहाँ कहाँ होता है, तो सामान्य मनुष्यों में 26 के बाद ये जो है शरीर पर्याप्ति पूरी होने पर 28 हो जाता है, परंतु जो आहारक वाले 25 थे वे 2 बढ़कर यहाँ 27 पर आते हैं, एक बात। और जो सामान्य केवली वो 20 से 26 हो गए थे, तो तीर्थंकर जब समुद्घात करते हैं तब 21 में से 27 में आते हैं कपाट अवस्था में। अब ये 28 वाला जो स्थान है, सामान्य है वो 26 के बाद 28 में आते हैं, बराबर, और विशेष वाले जो है वो भी 25 से 27 और 27 में से 28 उच्छ्वास पर्याप्ति शुरू होने पर, और जो विशेष विशेष है वो भी जो 26 वाले हैं वो 28 में आ जाते हैं। 29 वाले में सामान्य मनुष्यों में उच्छ्वास पर्याप्ति पूरी होने पर 29 वाला हो जाता है, विशेष वाला भी 29 होता है भाषा पर्याप्ति पूरी होने पर, जो 28 था अभी 29 में है, और विशेष विशेष में जो है तीर्थंकरों की अपेक्षा एक भंग और विशेष विशेष में वो 12 का 29 वाला स्थान। 30 वाला जो स्थान है सामान्य मनुष्य के 1152 भाषा पर्याप्ति पूरी होने पर की बात है, विशेष वालों को आहारक वालों को ये नहीं होता है, और विशेष विशेष वालों को तीर्थंकरों का एक भंग और अन्य का 24 भंग, और 31 वाला एकमात्र तीर्थंकरों के ही होता है मूल शरीर में प्रवेश करने पर। अब ये 9 और 8 वाला कौन कौन सा है, 14वें गुणस्थान वाले के। 9 वाला होगा तीर्थंकरों को और 8 वाला होगा सामान्य केवलियों को, तीर्थंकर प्रकृति को छोड़कर अन्य 8 प्रकृति का। ये नाम कर्म के उदय के स्थान है अलग अलग। अब ये मनुष्यों की बात हो गई, अब देवगति वालों को कौन कौन सा होता है उसकी बात करेंगे। उनमें भी 5 अलग अलग हो गए ना, एक विग्रह गति में, एक मिश्र अवस्था है, एक शरीर पर्याप्ति, एक उच्छ्वास पर्याप्ति और भाषा पर्याप्ति, उनके भी ऐसे 5 काल हो गए। तो देखो देवगति में 21, 25, 27, 28 और 29 प्रकृतिक 5 उदय स्थान होते हैं। उनमें 21 प्रकृतिक उदय स्थान इस प्रकार है, या तो केवल कौन सी गति और कौन सी गत्यानुपूरी वगैरह वगैरह बदलेगी, जैसे नरक में हमने अप्रशस्त प्रकृतियों ही सारी देखी थी, या प्रशस्त वगैरह अधिक होंगे। अब देखते हैं यहाँ जो 21 के बाद एकदम 25 लिया, मनुष्यों में 21 के बाद 26 लिया था, क्योंकि वहाँ सहनन होता है औदारिक शरीर के साथ, यहाँ सहनन नहीं होता, वैक्रियक शरीर वालों के सहनन नहीं पाया जाता। तो ये 21 कौन कौन सी है, देवगति, पंचेंद्रिय जाति, तेजस और कारमान शरीर, कौमा देना वहाँ, वर्ण गंध रस स्पर्श, देवगति प्रायज्ञान पूर्वी, अगुरु लघु, त्रस बादर पर्याप्त, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ। देखो यहाँ पर्याप्त अपर्याप्त भेद नहीं किया, पर्याप्त अपर्याप्त भेद तो मनुष्यों में था और तिर्यंचों में भी था, देवों में कोई अपर्याप्त नहीं होते, अपर्याप्त नामकर्म का उदय नहीं होता, उनको अपर्याप्त कहते हैं जब तक पर्याप्ति पूरी नहीं होती तब तक। परंतु जो अपर्याप्त नाम कर्म के उदय में छोटी आयु में ही मर जाते हैं, वैसे देव में भी नहीं होता और नरकों में भी नहीं होता और ना ही भोग भूमि में होता है, उनकी तो असंख्यात वर्षों की आयु वाले वो पूरी वहां तो होती है उनकी, उसमें कुछ बाद में भी अकाल मरण वगैरह नहीं होता उसमें, इसलिए यहाँ पर्याप्त ही लिया एक। सिर सिर शुभ अशुभ लिए, अब सुभग लिया, दुर्भगों को नहीं लिया, नरक में दुर्भग अकेला लिया, देवों में अकेले सुभग लिया, आदेय लिया और यश कीर्ति लिए, निर्माण, यानी इनके भी एक ही भंग है। मनुष्यों में तो हम बहुत सारी पॉसिबिलिटी, पर्याप्त भी थे, अपर्याप्त भी थे, सुभग दुर्भग भी थे, आदेय अनादेय भी थे, यश कीर्ति अयश कीर्ति भी थे, बहुत सारे भंग देखे ना हमने। इन 21 प्रकृतियों का एक उदय स्थान होता है, भंग एक है। शरीर के ग्रहण करने पर देवगति में अनुपूर्वी को निकालकर 21 में से एक अनुपूर्वी को घटा देना और अन्य अभी कितने मिलाएंगे, 5, सहनन यह नहीं होगा। तो कौन कौन से 5 मिलेंगे, देखो वैक्रेक शरीर, समचतुरस्र संस्थान, यहाँ भी एक ही संस्थान है, नारकियों में कौन सा संस्थान देखा था, कुंडक संस्थान, और यहाँ समचतुरस्र संस्थान। वैक्रेक शरीर अंगोपांग, उपघात, प्रत्येक शरीर, इन 5 प्रकृति के मिला देने पर, 4 और 5 हुए ना, 25 प्रकृतिक उदय स्थान होता है, भंग एक है, ये सारे उनके प्रशस्त प्रकृतियों का उदय है। शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त हुए देव के, अभी जब शरीर पर्याप्ति पूरी होती है तो और कौन कौन से हो जाएंगे? परघात और प्रशस्त भी आएगा। पूर्वोक्त 25 प्रकृतियों में परघात और प्रशस्त विहारगति, इन दो प्रकृतियों के मिला देने पर 27 प्रकृतिक उदय स्थान होता है, भंग एक है। यानी यहाँ 21, 25 और 27। फिर आन प्राण पर्याप्ति से पर्याप्त हुए देव के पूर्वोक्त 27 प्रकृतियों में उच्छ्वास प्रकृति और प्रविष्ट हो जाती है, यानी और उसका उदय शुरू हो जाता है। उस समय 28 प्रकृतिक उदय स्थान होता है, भंग एक है। भाषा पर्याप्ति से पर्याप्त चाहिए, पर्याप्त हुए देव के, पर्याप्त शब्द रह गया है। भाषा पर्याप्ति से पर्याप्त हुए देव के पूर्वोक्त 28 प्रकृतियों में सुस्वर के प्रविष्ट हो जाने पर, यहाँ दुस्वर को छोड़ दिया, सुस्वर लिया, 29 प्रकृतिक उदय स्थान होता है, भंग एक है। अब शंका, उन 29 प्रकृतियों वाले उदय स्थान का, उदय हो गया, उदय स्थान का यह डालना, उसमें काल कितना है? कोई कहेगा कितना काल है? दीपेश भाई आप कहोगे? हाँ, मैक्सिमम 33 सागर। 33 सागर में ये भाषा पर्याप्ति तक का एक अंतर्मुहूर्त घटा देना, यहाँ तो हमारा एक एक समय का भी हिसाब चलेगा। और मिनिमम कितना होगा? हाँ, कम से कम 10,000 वर्ष में अंतर्मुहूर्त कम। देखो यहाँ बताएंगे, अभी समाधान करते। भाषा पर्याप्ति से पर्याप्त देव के प्रथम समय से लेकर, यानी जब भाषा पर्याप्ति पूरी होती है वहां से अगर काउंट करेंगे, प्रथम समय से लेकर आयु का अंतिम समय आने तक इस उदय स्थान का काल है। ये जो 29 वाला उदय स्थान है, भाषा पर्याप्ति पूरी होते ही 29 का उदय शुरू हुआ, आयु के अंत तक रहेगा। उस काल का प्रमाण जघन्य से अंतर्मुहूर्त से हीन 10,000 वर्ष, ये देवों की मिनिमम आयु, और वो भी भवनवासी आदि जो होते हैं उनमें ये मिनिमम होती है, नहीं तो कल्पवासी जो सौदर में ईशान है वहां तो सागरों की रहती है, देविया है उनकी पल्लियों में होती है। और उत्कृष्ट से अंतर्मुहूर्त कम 33 सागरोपम प्रमाण है, जो सर्वार्थ सिद्धि वासी देवों की आयु जो है उत्कृष्ट, वो 33 सागर है, उसमें भी भाषा पर्याप्ति तक का एक अंतर्मुहूर्त कम करेंगे तो ये 29 वाला स्थान उनके कितना है? अंतर्मुहूर्त कम 33 सागर। देवों के पांचों उदय स्थानों के समस्त भंगों का योग 5 हुआ, क्योंकि यहाँ कोई ऑप्शनल प्रकृति नहीं है, सारी प्रशस्त प्रकृतियां हैं। अब चारों ही गतियों के उदय स्थानों की टोटल कर रहे हैं, चारों गतियों के उदय स्थानों के भंगों का योग 7,670 होता है। ये कैसे निकाले? तो नरक गति के 5 उदय स्थान, उसमें सारी अप्रशस्त प्रकृतियां देखी थी हमने, तिर्यंश के, हाँ उदय स्थान 9 है परंतु भंग ये अलग अलग 4,992। मनुष्यों के उदय स्थान 11 बताए थे, वो सारे 13वें 14वें गुणस्थान को लेकर सब, और सारे ही भंग 2,668। देवों के 5 उदय स्थान और 5 भंग, तो 7,670। यहाँ तो ये सारे उदय स्थान गिनाए हैं, और अभी समय सार में एक ही गाथा में कितने सारों को हटा दिया, ये बंद स्थान मैं नहीं हूँ, उदय स्थान मैं नहीं हूँ, ये सारों, हाँ ये अपना स्वरूप नहीं है, फिर भी पर्याय में या संयोगों में ये है, जो है उसका निषेध करेंगे, जो है ही नहीं उसका क्या निषेध करेंगे, है ना? जीव की पर्याय में ये सारे ही है, इनका उदय भी पाया जाता है और उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है, परंतु इस रूप मैं नहीं हूँ ये मूल में स्वीकार करना। हाँ, देव और नारकियों के लिए भाषा पर्याप्ति पूरी होने पर 29-29 का ही उदय है। नाम कर्मों की बात हो, हाँ, हमने तो अलग अलग कर्मों की मूल प्रकृतियां लेकर उत्तर प्रकृतियों के वो गुणस्थानों के अनुसार वगैरह वो बदलेगी। मोहनीय के जो उदय स्थान है वो गुणस्थान के अनुसार बदलते हैं, और नाम कर्मों के उदय स्थान गति के अनुसार बदलेंगे। और ये जो उसके उदय के काल है ना, विग्रह गति में, फिर मिश्र अवस्था में, शरीर पर्याप्ति पूरी होने पर उच्छ्वास पर्याप्ति और भाषा पर्याप्ति। भाषा पर्याप्ति पूरी होने पर जो नाम कर्मों का उदय चल रहा है वही वो आयु के अंत तक वैसा ही चलेगा। चारों ही गति में ऐसा ही होता है, उसमें कोई उदय में परिवर्तन नहीं होता है। परंतु मोहनीय में क्या है, जो मिथ्यात्व है उसको मिथ्यात्व और अन्य अन्य का उदय, अभी चौथे में चला गया तो मिथ्यात्व का उदय भी मिट गया, बंध भी मिट गया, अनंतानुबंधी का उदय बंध मिट गया। अभी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन का है और ऊपर के गुणस्थानों में चला जाएगा तो उनका भी यथायोग्य बंध उदय मिटता चला जाता है। वो तो गुणस्थान के अनुसार, क्योंकि गुणस्थान हम कहते ही है मोह और योग के निमित्त से जो जीव के वो पर्याय में जो तारतम्यता होती उसको, तो वहां तो मोहनीय का ही उदय स्थान जो है वो अलग अलग है गुणस्थानों के अनुसार। नाम कर्म के उदय स्थान है उसके जो पांच काल बताए उसके अनुसार उसके उदय स्थान है, और भाषा पर्याप्ति पूरी होने पर ये जितने का उदय है उतने का तो आयु के अंत तक उतना ही उदय बना रहेगा। चले, इस प्रकार चूंकि एक एक गति के साथ अनेक कर्म प्रकृतियों का उदय पाया जाता है, अतएव ये पहले प्रश्न कहां से उठा था, हमने चार सूत्र पढ़े थे कि नर गति के उदय से जीव नारकी होता है, तिरंज गति नाम कर्म के उदय से जीव तिरंज होता है वगैरह वगैरह। तो केवल नरक गति के उदय से ही नारकी होता है, तिरंज गति के उदय से ही तिरंज होता है, मनुष्य गति के उदय से ही मनुष्य होता है, और देव गति के उदय से ही देव होता है, यह कथन घटित नहीं होता, ये शंका करके शंका है। समाधान, यह उपन्यास विषम है क्योंकि नारक आदि चार पर्यायों के प्राप्त होने में जिस प्रकार नरक गति आदि चार प्रकृतियों के उदय का क्रमशः अविनाभावी संबंध है, वैसा शेष कर्मों के उदयों का वहां अविनाभावी संबंध नहीं पाया जाता। क्या कहते हैं, जो नारकी है उनके तो नरक गति नाम कर्म का उदय है ही, और जिनके नरक गति नाम कर्म का उदय नहीं है वे नारकी भी नहीं है, बराबर। परंतु क्या हम दुर्भग सुभग के बारे में ऐसा कह सकते हैं कि जिसको दुर्भग का उदय वो नारकी है, ऐसा कह सकते? नारकियों में दुर्भग का उदय है परंतु दुर्भग का उदय है वो नारकी है, हम ऐसा लक्षण तो नहीं बांध सकते। लक्षण कैसे कह सकते? जिसके नरक गति का उदय है, नरक गति नाम कर्म का, वे नारकी है। ये तो बिल्कुल रूल है ना, इसको कहते हैं अविनाभावी संबंध। दोनों ओर से उसकी व्याप्ति बता दी उन्होंने। उत्पन्न होने के प्रथम समय से लगाकर पर्याय के अंतिम समय तक जिस प्रकृति का नियम से उदय होकर विवक्षित गति के समय सिवाय अन्यत्र उदय न होने का नियम देखा जाता है। देखो क्या है, अभी ये क्या बताते हैं, जैसे नरक गति नाम कर्म का उदय आयु के पहले समय से लेकर, आयु कब से लेना, विग्रह गति वाली, यहाँ मरण होते समय पूर्व की आयु थी, विग्रह गति से ही अगले वाली आयु का उदय चालू हो गया, तो वहां भी गति नाम कर्म तो था ही। आप कहेंगे वहां अन्य भी 12 ध्रुवोदयी थी, आप क्या कहते हैं, तो उसमें तेजस था, कारमान था, अन्य अन्य थे ना सारे स्पर्श रस, ये सारे अन्य अन्य जो, हाँ, वर्णादि वगैरह निर्माण वगैरह था, तो कहेंगे उसका भी उदय हर समय बना रहा था। परंतु वहां ऐसा रूल तो नहीं बता सकते, वो तो चारों गति में है। यहाँ क्या दोनों ओर से होना चाहिए, लक्षण क्या बताए, एक बात, एक पहली कंडीशन, उत्पन्न होने के पहले समय से ही उसका उदय निरंतर चलना चाहिए, एक बात लिखा ना, उत्पन्न होने के प्रथम समय से लगाकर पर्याय के अंतिम समय तक जिस प्रकृति का नियम से उदय होकर एक कंडीशन, तो ये ध्रुवोदय का भी उदय निरंतर चल रहा है और एक कंडीशन है उसके लिए, विवक्षित गति के सिवाय अन्यत्र उदय न होने का नियम, ये दोनों ही कंडीशंस फुलफिल करेंगे तो हम वो तो नरक गति के उदय से जीव नारकी होता है, ये अपने लक्षण जो हमने बांधा है वो सही प्रतीत होता है। क्योंकि नरक गति नाम कर्म का उदय नारकियों को छोड़कर अन्य तीन गतियों में नहीं पाया जाता है, और नारकियों में वो आयु के पहले समय से लेकर अंतिम समय तक पाया जाता है, ये दोनों ही ओर से ये लक्षण हमें सिद्ध होता है। उसी कर्म प्रकृति के उदय से नारकी तिर्यंच मनुष्य और देव होता है ऐसा निर्देश ने कथन किया गया है, अन्यथा अनवस्था उत्पन्न हो जाएगी। अनवस्था ने वो सारे घोटाले हो जाएंगे। अगर तेजस कर्मण के उदय से कहो या दुर्भग नाम कर्म के उदय से जीव नारकी होता है ऐसा अगर कहेंगे तो अनवस्था का प्रसंग आएगा, क्योंकि मनुष्यों के भी पाए जाते हैं, तिर्यंचों के भी पाए जाते हैं, है ना। देवों में दुर्भग नहीं होता, वो तो सुभग होता है। हाँ, अन्य स्पर्श रस गंध वर्ण की बात, हाँ उपन्यास विषम है, ने उन्होंने जो न्याय बताया है वो विषम है। विषम है ने एक ओर से आप बता रहे परंतु दूसरी ओर से वो सिद्ध नहीं होता है ना। नारकियों को इतने प्रकृतियों का उदय है वो ठीक है, परंतु इतने प्रकृतियों का उदय है इसलिए नारकी है ऐसा हम कह नहीं सकते। रिवर्स इज नॉट ट्रू, एक ओर से ही खाली नहीं चलेगा, अविनाभाव संबंध बताना पड़ेगा, तो दोनों ओर से वो व्याप्ति बैठना चाहिए उसकी, दोनों ओर से उसकी डेफिनेशन सिद्ध होनी चाहिए। हम जैसे लक्षण बांधते ना, अतिव्याप्ति अव्याप्ति नहीं होने चाहिए, अभी शाम को विषय चला था अपना, तो वैसे यहाँ भी ऐसा ही लक्षण कहो, जैसे नरक गति नाम कर्म का उदय अन्य किसी गति में न हो और नारकियों में सब में हो, ऐसा लक्षण है। अभी अन्य जो स्पर्श रस गंध तेजस कारमान है या अन्य कोई हम कहेंगे वो तो अन्य में भी उसका उदय है, तो वो लक्षण उसका बराबर फिट नहीं बैठता। अब ये चारों गति की बात हो गई, अब सिद्ध गति की बात चलेगी, पंचम गति। ऊपर पढ़ेंगे हम सूत्र 12 नंबर का, सिद्धि गति सिद्धो नाम कदम भवती। सिद्धि गति में जीव सिद्ध किस कारण से होता है, यहां भी पहले के समान नए और निक्षेपों का आश्रय लेकर क्या चालना करना चाहिए। अथवा उदय आदि पांच भावों के आश्रय से चालना करना चाहिए। चालना कायोवा, असिदुण चालना कायोवा, यानी उसकी उसको लेकर हमें समझना चाहिए। पहले हमने देखे थे ना सात जो नए है, नयगम संग्रह व्यवहार रुजु सूत्र वगैरह वगैरह, उसकी अपेक्षा से किस किस को नारकी कहना उसकी बात हमने पहले देखी। निक्षेप की अपेक्षा भी नाम स्थापना द्रव्य भाव निक्षेपों से चर्चा की थी, और पांच भाव यानी औदयिक भाव क्षयोपशमिक क्षायिक औदयिक हो गया ना पारिणामिक वगैरह, जो पांच भाव है उसकी अपेक्षा से भी चर्चा की थी कि जो नरक गति नाम कर्म औदयिक भाव है वगैरह हमने देखा था, वैसे यहाँ भी सभी भावों पर एप्लीकेशन करना चाहिए, चालना करना चाहिए ने उसको अप्लाई करने चाहिए। यानी वह कौन से नए से सिद्ध कहेंगे वो सारी बातें यहां भी बतानी। वहां हमने अलग अलग नयों से बताए थे, जैसे नयगम नये से ऐसा भी बताया था कि अभी तो भविष्य में होने वाला है नारके, अभी उसके भावों को देखकर अभी हम उसको नारके कहते, आदि अलग अलग नयों से देखा था ना, वैसे यहां भी लगाना। अब इसका उत्तर देते हैं, खई आए लद्धिये, यानी क्षायिक लब्धि के कारण जीव सिद्ध होता है, एक शायिक लब्धि कितनी होती मालूम है? हाँ, नौ होते। कौन कौन सी? हाँ, अभी अनंत लगाओ, अच्छी बात है, मगर क्षायिक शब्द लगाए तो अच्छा है। हाँ हाँ, देखो, क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र। हाँ हाँ, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, वो उसके आगे क्षायिक लगा दो। ये लब्धि, नव लब्धि कहते हैं इसको। हाँ, लब्धि यानी कुछ प्राप्ति हुई ना, ये क्षायिक भाव जो प्रकट हुए है उसके कारण जीव सिद्ध होता है, ऐसा यहाँ लिखा है। वो पांच लब्धि वाली लब्धि अलग, वो प्रथम ऑप्शन सम्यक्त के पूर्व होने वाली वो लब्धि अलग, उसकी यहाँ चर्चा नहीं। यहाँ तो क्षायिक लब्धियों की बात है। देखो, उसका विस्तार करते हैं। कर्मों के निर्मूल क्षय से, निर्मूल यानी संपूर्णतः क्षय होने पर उत्पन्न हुए परिणाम को क्षय कहते हैं, और उसी की लब्धि से अर्थात क्षायिक लब्धि के कारण जीव सिद्ध होता है। यानी कर्मों के समूल नाश से जो क्षायिक लब्धि प्राप्त होती है, वो परिणाम को कहा ना क्षायिक लब्धि यानी प्राप्ति, ऐसे परिणाम होना, उसके कारण जीव सिद्ध होता है। शंका, सिद्धि गति में सत्व, प्रमेयत्व आदि अन्य परिणाम भी होते हैं, उनसे सिद्ध होता है ऐसा क्यों नहीं कहते? सत्व यानी अस्तित्व वगैरह जो है वहाँ, प्रमेयत्व आदि भी गुण है वहाँ पर, तो उसके कारण सिद्ध होते हैं ऐसा क्यों नहीं कहा? तो उसका समाधान करते हैं। वो बीच में लाइन देख, नहीं, क्योंकि यदि वे सत्व, प्रमेयत्व आदि परिणाम सिद्धत्व के कारण होवे, देखो अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अग्र लघुत्व सब, हाँ, प्रदेशत्व तक, अभी उसके ही कारण यदि कोई सिद्ध हो जावे तो ये तो सामान्य गुण है, तो सभी जीव सिद्ध हो जाएंगे। तो क्या कहते हैं, यदि सत्व, प्रमेयत्व आदि परिणाम सिद्धत्व के कारण होवे तो सभी जीव सिद्ध होवे जाएंगे, क्योंकि अस्तित्व सभी जीवों में पाया जाता है। सत्व यानी अस्तित्व, सत्ता, इसलिए क्षायिक लब्धि से सिद्ध होता है ऐसा ग्रहण करना चाहिए। यहाँ तक हमने गति मार्गणा की अपेक्षा से ये सारा विवेचन देखा। हमें 14 मार्गणाओं के आधार से यहाँ वर्णन चलेगा। अब इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा से बात बताएंगे। इंद्रियाणुवादेन एइंद्रियो, बीइंद्रियो, तीइंद्रियो, चौरिंद्रियो, पंचिंद्रियो नाम कदम भवति? क्या कहते? इंद्रिय मार्गणानुसार हमने मार्गणा का अर्थ क्या देखा था? खोज, अन्वेषण। जीवों को हमें खोजना है तो वहाँ कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, या जीवों के अगर हमको क्लासिफिकेशन करना है तो हमें अलग अलग 14 अलग अलग हमने अपेक्षा बनाई, क्राइटेरिया, उसकी अपेक्षा से हम ग्रुप्स बनाएंगे। जैसे हमने 4 गति और 1 सिद्ध गति, ऐसे 5 ग्रुप्स बनाए, वैसे इंद्रियों की अपेक्षा से भी ये एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय, और असिद्धों को हम अनिंद्रिय कहेंगे, तो उसको कहेंगे इंद्रिय मार्गणा के अनुसार ये ऐसे ऐसे ग्रुप्स है। तो जीव एक इंद्रिय क्यों होते हैं ऐसा प्रश्न है, द्विइंद्रिय क्यों होते हैं, तीनइंद्रिय क्यों होते हैं? तो इंद्रिय मार्गणा अनुसार एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तीनइंद्रिय, चतुरिंद्रिय व पंचेंद्रिय जीव कैसे होता है? यहाँ पर नामादि निक्षेपो, नैगमादि नयों और औदयकादि भावों का आश्रय करके पहले के समान इंद्रिय की चालना करना चाहिए, इसका अर्थ चर्चा करना चाहिए। यहाँ सातों ही नयों के द्वारा किसको ये इंद्रिय वाले कहना वो बताएंगे, फिर निक्षेपों के द्वारा बताएंगे, औदयिक आदि 5 भावों के द्वारा बताएंगे, कौन से भाव लगता है, कौन सा नहीं लगता है, वो सारी जो हमने पहले बहुत विस्तार से चर्चा की थी वो हर बार उस पर लगा लेना। अब कहते हैं ये क्यों होते हैं, उसका उत्तर यहाँ बता रहे। खव समियाए लद्दीए, क्षायोपशमिक लब्धि से, ये पंच लब्धि वाली क्षोपशम लब्धि नहीं हो, क्षायोपशमिक लब्धि से जीव एकेंद्रिय, क्योंकि ये सभी में लब्धि लगाई है, एकेंद्रिय से लेकर क्षोपशम भाव तो सब में है ना, तो क्षायोपशमिक लब्धि से जीव एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय होता है, वो सिद्ध शब्द निकाल देना वहां से। नहीं नहीं नहीं, ऊपर देखो कहाँ गया, पंद्रह खवोव समियाए लद्दी, ये पीछे जो उन्होंने शुद्धि पत्रक जोड़ा है उसमें भी ये सिद्ध शब्द निकाल दिया है, पंचेंद्रिय होता है, यानी कैसे होता है तो क्षायोपशम लब्धि से होता है, इतना ही बताए। इंद्र के चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं, और इंद्र क्या करेक्शन है 61, एकेंद्रिय आदि होता है, पंचेंद्रिय आदि होता है, सिद्ध के बदले आदि लिखो, आदि लिखने की जरूरत नहीं, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तीनेंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पांच ही लिखा है ना, एकेंद्रिय आदि यानी वो एक, वो सबका नाम नहीं लेंगे ना, इसलिए उन्होंने आदि लिख दिया, सभी के नाम लिया फिर आदि कैसे लिखेंगे हम, यानी एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तीनेंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय होता है ऐसा, ये सबका नाम लेने के बदले उन्होंने आदि लिख दिया। देखो इंद्र के चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं, इंद्र जीव है, जीव को यहाँ इंद्र कहा है, आत्मा को भी इंद्र कहते हैं, उसके चिन्ह है ना, अभी उसका जो चिन्ह अर्थात ज्ञापक, ज्ञापक यानी बताने वाला, उसके द्वारा हम उसका अनुमान लगाते हैं, ज्ञापक जो या सूचक है वह इंद्रिय है। शंका, एकेंद्रियपना क्षायोपशमिक किस कारण से होता है, उसको एकेंद्रियपना जो है वो क्षायोपशमिक क्यों कहा उसको, तो वहां क्षायोपशम भाव घटा के दिखाएंगे, पहले इसको पढ़ते हैं फिर क्षायोपशम किसे कहना वो सारा देखेंगे। कहते हैं स्पर्शन इंद्रियावरण कर्म के, ये स्पर्शन इंद्रिया संबंधी जो ज्ञान है उसको कहते हैं स्पर्शन इंद्रिया, ज्ञान है तो उसका आवरण वाला कर्म, ज्ञानावरण कौन सा है उसमें, स्पर्शन इंद्रियावरण, एकेंद्रिय जीवों के एकमात्र स्पर्शन इंद्रिय संबंधी ज्ञान का उघाड़ है, बराबर है, परंतु उस जो आवरण वाला कर्म है उसका क्षोभशम पाया जाता है, तो क्षोभशम की परिभाषा पहले यहां बता रहे, तो उस कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों के सत्वोपशम से, उसी के सत्वोपशम है ने सत्ता में पड़ा ही रहना, उसी के देशघाती स्पर्धकों के उदय से, उदय कैसा हो रहा है देशघाती, पहले हमने क्षोभशम की परिभाषा ऐसी सीखी थी, वर्तमान देखिए ये जो क्या है ज्ञानावरण है ना, अब ये मति ज्ञानावरण है, मति श्रुत ज्ञान है ना, एक इंद्रियों को भी, अब मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण और मन परे ज्ञानावरण, ये जो कर्म है वो कैसे है, देशघाती प्रकृतियां है, और केवल ज्ञानावरण सर्वघाती प्रकृति है, बराबर, एक बात ये भाई, ये तो प्रकृति के भेद हुए, देशघाती प्रकृति और सर्वघाती प्रकृति, अभी एक एक प्रकृति में बहुत सारे स्पर्धक पाए जाते हैं, तो स्पर्धक हीन अनुभाग से लेकर अधिक अनुभाग तक, तो मान लेते हैं इसमें ये सर्वघाती स्पर्धक है और ये देशघाती स्पर्धक है, पर अभी सर्वघाती का उदय हो जाएगा तो पूरा ही घात होगा। मति ज्ञान आवरण के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय हो जाएगा तो क्या होगा, मति ज्ञान भी पूरा मिट जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है, ख्याल है ना। तो जो सर्वघाती प्रकृतियां हैं जैसे केवल ज्ञानावरण है उनमें सभी स्पर्धक सर्वघाती के ही होते हैं, केवल ज्ञान में, तो उसका उदय चल रहा है तो पूरा घात चल रहा है। केवल ज्ञानावरण में ये देशघाती वाले स्पर्धक नहीं होते, ये सबको मिलकर प्रकृति कहा, और उसके विशिष्ट अनुभाग वाले जो परमाणुओं के समूह उसको हमने स्पर्धक कहा। अब जो मति ज्ञानावरण है देशघाती प्रकृति है उसके स्पर्धक कैसे होते हैं, देशघाती भी होते हैं और सर्वघाती भी होते हैं। अब जो मति ज्ञान हमारा चल रहा है, हाँ, प्रकृति में जो है प्रकृतियां तो सर्वघाती और देशघाती होती हैं, सर्वघाती और देशघाती, बराबर। अब ये सर्वघाती प्रकृति के स्पर्धक सभी सर्वघाती ही होते हैं और देशघाती के स्पर्धक कैसे होंगे, हाँ सर्वघाती भी है, आपने पढ़ी है पंचलब्धि, हाँ तो सर्वघाती भी है और देशघाती भी है इसमें। अब जो क्षयोपशम होता है इन्हें क्या होता है, तो ये जो सर्वघाती स्पर्धक है उनका वर्तमान में उदय नहीं है, अभी हम ऐसा देखेंगे उदय रूप प्रकृतियां, तो इसमें ये निषेक कहलाता है। वर्तमान में समय में आने वाले इतने परमाणु हैं, इन परमाणु में कुछ तो सर्वघाती भी है और कुछ देशघाती भी है, परंतु सर्वघाती रूप से उदय नहीं होता, उदय तो देशघाती रूप से ही होता है। तो वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदय का अभाव है वही क्षय कहलाता है। भविष्यकालीन यहाँ पर जो सर्वघाती पड़े हैं वो अपनी जगह छोड़कर सर्वघाती रूप से उदय में नहीं आते तो उसको कहते सद अवस्था रूप उपशम, यहाँ सत्वोपशम कहा उसको, है ना, है वहीं पर बने रहना, अपनी जगह छोड़कर उदय उदीर्णा होकर उदय रूप नहीं होना, तो उदय तो किसी का चलेगा ही। तो यहाँ जो देशघाती स्पर्धक है उस रूप से उदय हो रहा है तो इसको कहते हैं क्षोपशम। तो अभी एकेंद्रीय जीवों में घटा रहे हैं, एकेंद्रीय जीवों में क्या है, उनके तो जो अन्य जो है ना इंद्रिय संबंधी ज्ञानावरण, कौन से, रसना ज्ञानावरण है, रसना इंद्रिय आवरण जो है वो घ्राण संबंधी चक्षु संबंधी, उसका तो उदय है, सर्वघाती का उदय चल रहा है, यानी उस संबंधी ज्ञान नहीं है, परंतु जो ज्ञान प्रकट है वो कौन सा है, स्पर्शन संबंधी है। तो उनके जो स्पर्शन इंद्रियावरण कर्म है उनके सर्वघाती जो कर्म है उनके उदय का अभाव है, सत्वोपशम है, सत्ता में पड़े हैं, उदय रूप नहीं हो रहे। उदय किसका है, देशघाती का है, देशघाती यानी थोड़ा घात और थोड़ा ओपन, पूर्ण रूप से आवरण नहीं करता, थोड़ा खुला है, तो उनका स्पर्शन इंद्रिय संबंधी ज्ञान थोड़ा खुला है, आवरण देश वाला है यानी थोड़ा खुला है उनका। तो इस तरह से फिर पढ़ेंगे इसे कि कहते हैं स्पर्शनेन्द्रियावरण कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों के सत्वोपशम से, सत्ता में उपशमित है, उदय नहीं हो रहा है, और उसी के ने स्पर्शनेन्द्रियावरण के देशघाती स्पर्धकों के उदय से, एक बात, ये तो स्पर्शन इंद्रियावरण संबंधी बात है, और चक्षु श्रोत्र घ्राण और जिह्वा इंद्रियावरण कर्मों के देशघाती स्पर्धकों के उदय क्षय से, उदय क्षय ने उदय का अभाव, देशघाती का उदय नहीं अभी, उन्हीं कर्मों के सत्वोपशम से, वहां उल्टा करना उसका, वो सत्ता में पड़े देशघाती परंतु उदय सर्वघाती का चला है, तथा सर्वघाती स्पर्धकों के उदय से बात है ना, यानी स्पर्शन इंद्रियावरण है उसका तो देशघाती का उदय चल रहा है, और उनके रसना जो है घ्राण चक्षु वगैरह उस संबंधी जो ज्ञानावरण है उसका उदय चल रहा है, सर्वघाती का उदय चल रहा है, यानी उस संबंधी उनके ज्ञान का उघाड़ नहीं है, आवरण का उदय है, ज्ञान का उघाड़ नहीं है। हम पंचेंद्रिय है तो हमारे पांचों ही इंद्रियावरण का क्षयोपशम चल रहा है, अकेले पांचों नहीं, हम संगी भी है तो नौ इंद्रिय मन जो है उस संबंधी जो आवरण है उसका भी क्षोपशम चल रहा है, हमारे देशघाती का उदय चल रहा है, बराबर। तो ज्ञान कुछ ना कुछ कम ज्यादा अवस्था में प्रकट है, जिनके ऐसा पूर्ण उदय है उनका अप्रकट है। यह दो इंद्रिय जीव है उसमें तो स्पर्शनेन्द्रियावरण और रसनेन्द्रियावरण, इनके देशघाती का उदय चलेगा और सर्वघाती सत्ता में पड़े रहेंगे, और अन्य जो तीन जो है घ्राण चक्षु और श्रोत्र संबंधी आवरण है उसका सर्वघाती का उदय चलेगा, देशघाती सत्ता में पड़े रहेंगे।
आने वाले नहीं लिखा।
हाँ,
आने वाले सर्वघाती कर्मों का
भविष्य में है।
तीन पार्ट है ना,
हाँ, क्षोभशम के यहाँ दो में ही उन्होंने समझा दिया। ऐसे उदय से जो जीव परिणाम उत्पन्न होता है ये कर्मों में क्षोभशम होता है, देशघाती का सर्वघाती का यथायोग्य उदय होता है, तो वहां उस जीव का जो परिणाम है यानी उसका जो ज्ञान का उघाड़ है, परिणाम यानी यहाँ ज्ञान संबंधी है ना, क्योंकि ज्ञानावरण की बात है, तो जीव का जो परिणाम उत्पन्न होता है उसे क्षोभशम कहते हैं, क्योंकि वह भाव पूर्वोक्त स्पर्धकों के क्षय और उपशम से उत्पन्न होता है, यानी क्षयोपशम से उत्पन्न होता है। परंतु यहाँ एक बात ख्याल में लेना, जीव का ज्ञान है वो किसी कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न नहीं होता है, क्षयोपशम का निमित्त है जरूर, परंतु ज्ञान तो जीव का स्वभाव है, वो जीव का अपना भाव है, कर्मों का क्षयोपशम हुआ इसलिए उसको ज्ञान प्रकट हुआ ऐसा नहीं है। ख्याल है, जैसे बादल है, मेघ आते हैं आकाश में तो धुंधला प्रकाश हो जाता है, सूर्य प्रकाश धुंधला हो जाता है, परंतु धुंधला भी जो प्रकाश है वो सूरज का है, वो बादलों से नहीं उत्पन्न हुआ है, प्रकाश है वो बादलों का नहीं है, उसमें जो प्रकाश में जो धुंधलापन आ गया है वो धुंधलापन बादलों के निमित्त से आया है, परंतु प्रकाश तो सूर्य का है। वैसे यहाँ भी कहेंगे ऐसा ही, कर्मों के क्षोभशम से जीव को ऐसा ज्ञान हुआ, ये निमित्त का कथन है, परंतु ज्ञान अपना स्वभाव है, वो स्वभाव अपने से उत्पन्न होता है, अब उसमें कर्म का जो निमित्त बनता है वो निमित्त भी बताने वाला है कि ये जीव ऐसा हीन ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है, ऐसे कर्मों के उदय ने बताया हमको, उसने जीव में कुछ नहीं किया। दो भिन्न द्रव्य है ना, कर्म कर्म में है, जीव जीव में है, जीव अपनी शक्ति से हीन ज्ञान रूप परिणमता है, तो वहां सामने कर्म बताता है कि जीव ऐसे जीव की अवस्था चल रही है, कर्म ज्ञापक है, करने वाला नहीं है, करता नहीं है ना वो, अभी अभी कर्ता कर्म अधिकार शुरू हुआ है अपना।
देखो यहाँ जीव ज्ञायक है और कर्म ज्ञापक है, यह की जगह प लगाना,
हाँ, बताने वाला है,
दिखाने वाला, बताने वाला, इंडिकेटर।
अब यहीं पर रुकते हैं हम, हाँ, अगले। अच्छा, परिणाम की एकेंद्रीय संज्ञा है, कुछ रह गया कल देखेंगे अभी हम। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो। अश्विन भाई।